नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। भारत में ईरान के राजदूत ने उम्मीद जताई भारतीय जहाजों को जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग मिलेगा। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने पश्चिमी इराक में अमेरिकी ईंधन भरने वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक दल के 4 सदस्यों की मौत की पुष्टि की। पेरू में मूसलाधार बारिश के कारण 283 जिलों में आपातकाल घोषित। फिच रेटिंग्स ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7.5% किया और भारत महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर के फाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने भारतीय जहाजों को जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति मिलने का संकेत दिया है। श्री फतेह अली ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत की ईरान से दोस्ती है। उन्होंने कहा कि ईरान का मानना है कि क्षेत्र में दोनों देशों के लिए साझा हित हैं।
हमारा मानना है कि ईरान और भारत मित्र हैं, हमारे बीच कई समानताएं हैं और भारत में राजदूत के रूप में मैंने आपसे कहा था कि युद्ध के बाद इस स्थिति में भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में हमारी मदद की है।
अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कल पश्चिमी इराक में ईंधन भरने वाले अमेरिकी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चालक दल के 4 सदस्यों के मौत की पुष्टि की है। केंद्रीय कमान ने कहा कि विमान में चालक दल के 6 सदस्य सवार थे। केंद्रीय कमान ने बताया कि यह दुर्घटना दुश्मनों की गोलीबारी के कारण नहीं हुई है। उधर ईरान की सरकारी मीडिया ने सैन्य मुख्यालय के प्रवक्ता के हवाले के दावे से बताया कि पश्चिमी इराक में लड़ाकू समूहों द्वारा दागी गई मिसाइल से विमान को मार गिराया गया था। पश्चिम एशिया में संघर्ष आज 14वें दिन भी जारी है। इसके अंत का अब तक कोई संकेत नहीं मिल रहा है। अमरीका द्वारा 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू करने के बाद से अमरीका, इसराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सुबह फिर से हवाई हमले किए गए। अमेरिका और इसराइली सेनाओं द्वारा तेहरान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर की गई बमबारी से काफी नुकसान हुआ है। ईरान, लेबनान और इसराइल में हताहतों की संख्या अब तक 2000 से अधिक बताई जा रही है। इस बीच आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात ने अपने ऊपर 7 बैलिस्टिक मिसाइलों और 27 ड्रोन हमलों को रोका। एक रिपोर्ट।
ईरान की मिसाइलों के बार बार तुर्की के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से नया संकट पैदा हो गया है। तुर्की ने पुष्टि की है कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान की तीसरी बैलिस्टिक मिसाइल को रोका, जिससे नाटो से जुड़े रक्षा संसाधनों की मदद से कथित तौर पर पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर नष्ट किया गया। तुर्की के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसे घटनाक्रम जारी रहे तो उसके पास जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है। तुर्की उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य है। उसने पहले मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश की थी और अब इन घटनाक्रमों की वजह से वे कठिन स्थिति में पड़ता जा रहा है। मिसाइलों द्वारा लगातार हवाई क्षेत्र का उल्लंघन तुर्की को नाटो साझेदारों के साथ अधिक सैन्य समन्वय की ओर धकेल सकता है। तुर्की को ये भी आशंका है कि युद्ध का दायरा और बढ़ सकता है, जिससे ईरान के साथ उसकी लंबी सीमा पर शरणार्थियों की संभावित बढ़ोतरी हो सकती है और वैश्विक ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के कारण आर्थिक दबाव भी बढ़ सकता है। विश्व दर्पण के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ वैष्णवी।
इस संघर्ष के कारण वैश्विक बाजारों में तेजी आ गई है। तेल की कीमतों में भी भारी उछाल आ रहा है, जिससे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को आपूर्ति बनाए रखने के लिए आपातकालीन भंडार का उपयोग करना पड़ रहा है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर उसका नियंत्रण अभी भी कायम है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि IRIS देना जहाज पर मारे गए 84 ईरानी नाविकों के शव को आज विशेष विमान के जरिए भेजा जाएगा। ईरान ने अमरीका के दक्षिणी समुद्री भाग में इस ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से हमला किया था। भारत ने पश्चिम एशिया में वर्तमान स्थिति के बीच ईरान से ऊर्जा और वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजिश्कियन से बात की।
प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत के दौरान हमारी जो प्राथमिकता है भारतीय नागरिकों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, इसके बारे में उजागर किया। साथ ही साथ उन्होंने जो महत्व है ऊर्जा और सामग्री के पारगमन का, इसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने गहरी चिंता जताई जो उस क्षेत्र में जो सुरक्षा की स्थिति बनी हुई है उस पर, और साथ ही साथ जो हमारा पक्ष है भारत का कि संवाद और राजनीति का रास्ता लेकर लोग आगे बढ़ें ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म किया जाए जल्द से जल्द।
श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में 170 भारतीय नागरिक ईरान की सीमा से अर्मेनिया पहुंचे हैं। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार भारतीय नाविकों की सुरक्षा और देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम तरफ जो पर्शियन गल्फ है उसमें 24 इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं, उसमें 677 भारतीय नाविक हैं। जो गल्फ ऑफ ओमान है उसमें 4 वेसल थे कल, एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश। इसके अलावा टोटल गल्फ रीजन में करीब 23,000 इंडियन नाविक हैं। डीजी शिपिंग इन सभी से निरंतर तरीके से संपर्क बनाए हुए है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश पेट्रोल और डीजल के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उन्होंने लोगों से घरेलू पीएनजी कनेक्शन लेने का भी आग्रह किया।
पीएनजी डोमेस्टिक सप्लाई और सीएनजी को बिना किसी कट के पीएनजी सप्लाई इंश्योर की जा रही है। भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि जिनको अभी एलपीजी सप्लाई की वजह से जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी उपभोक्ताओं से हमारी अपील है कि वो भी लोकल एरिया के सीजीडी नेटवर्क से बात करें और पीएनजी कनेक्शन लें।
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संग आसियान के विदेश मंत्रियों ने पश्चिम एशिया में संघर्ष को तुरंत समाप्त करने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने तथा कूटनीति और संवाद के जरिए मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 7.4% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि हालांकि पिछले 2 महीने में आर्थिक गतिविधियों में कुछ अस्थायी संकट की वजह से गिरावट आई है, लेकिन घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है और अर्थव्यवस्था की स्थिति भी मजबूत है। पेरू के 283 जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण उत्पन्न उच्च जोखिम को कम करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। यह आपातकालीन उपाय लीमा, अमेजोनास, अनकाश, कुस्को और अरेक्विप्वा सहित पेरू के 20 क्षेत्रों में 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारें, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संस्थान और विभिन्न मंत्रालयों के समन्वय से आपदा राहत और प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए तत्काल तथा आवश्यक उपाय और कार्रवाई करेंगी। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि कल रात काबुल के पुल ए चरखी इलाके में पाकिस्तान के हवाई हमले में 4 लोग मारे गए। महिलाओं और बच्चों समेत 14 अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने कल रात काबुल, कंधार, पक्तिया, पक्तिका समेत कई अफगान प्रांतों में ताजा सैन्य हमले किए। पाकिस्तानी सैन्य विमानों ने कंधार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास निजी एयरलाइन कंपनी के ईंधन भंडार पर भी हमला किया। एक रिपोर्ट।
तालिबान के प्रवक्ता जाबिहुल्ला मुजाहिद ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि रमजान के पवित्र महीने में किया गया ये अन्यायपूर्ण हमला स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान किसी भी मानवीय सिद्धांत या नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करता है। 26 फरवरी से दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में अफगानिस्तान के 75 लोग मारे गए हैं जबकि 193 लोग घायल हुए हैं। इस बीच अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि हवाई हमलों के जवाब में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुहाड़ जिले में पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तानी हवाई हमलों में कई अफगानी नागरिक हताहत हुए थे। अफगानिस्तान ने कोहाट में स्थित सैन्य किले और डूरंड लाइन पर स्थित युद्ध कमान केंद्र को भी निशाना बनाया है। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक।
हैदराबाद में भारत ने महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल मुकाबला कल भारत और इंग्लैंड के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने इटली को 1-0 से हराया। भारत की मनीषा चौहान ने एकमात्र गोल किया। अंतिम ग्रुप मुकाबले में भारत ने वेल्स को हराकर हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में ईरान के राजदूत ने उम्मीद जताई भारतीय जहाजों को जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग मिलेगा। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने पश्चिमी इराक में अमरीकी ईंधन भरने वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक दल के 4 सदस्यों के मौत की पुष्टि की। पेरू में मूसलाधार बारिश के कारण 283 जिलों में आपातकाल घोषित। फिच रेटिंग्स ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7.5% किया और भारत महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर्स के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।